हम आप सबको ये कृष्ण जन्माष्टमी के महामहोत्सव के अवसर पर स्वागत करते हैं। इस शुभ दिन में शास्त्रों के द्वारा सीखने के लिए कोटानुकोटि सबक हैं शास्त्रों में। शास्त्र बताते हैं कि ये जयंती जो मनाया जाता है ये सिर्फ भगवान के शुभ आगमन के समय मनाया जाता है। आजकल साधारणतः किसी भी मनुष्य के शायद राजनीतिक कोई मनुष्य के जन्म के दिन में लोग जयंती मनाते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं भगवान जब इस दुनिया में अवतरित होते हैं उस दिन में जो मनाया जाता है वही असली जयंती है। तो भगवान जब इस दुनिया में जब आते हैं किस लिए आते हैं भगवान? जैसे देवकी और वसुदेव ने उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी पूर्व जन्मों में, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेश होकर अवतरित होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि भगवान जब जन्म लेते हैं उनका जन्म साधारण जीवों के समान नहीं होता है। स्त्री पुरुष के संभोग से और वीर्य के द्वारा जो आत्मा को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इस तरह भगवान का जन्म नहीं होता है। ऐसे भागवत में ही बताया गया है कि भगवान पहले वसुदेव के मन में प्रवेश करते हैं, उसके बाद देवकी के हृदय में प्रवेश करते हैं, उसके बाद भगवान देवकी के हृदय से ऐसे ही प्रवेश होते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं शास्त्र में भगवान के तो कोई माता पिता नहीं बन सकते हैं। जैसे वराह देव आते हैं ब्रह्मा जी के नाक से, ऐसे नरसिंहदेव आते हैं एक खम्भ से, इस तरह भगवान कहीं से भी भगवान अवतरित हो सकते हैं। ऐसे उनके लिए कुछ जरूरत नहीं है कि उनके एक माँ बाप की जरूरत है, ऐसा नहीं है। फिर भी अपने जो प्रेमी भक्त होते हैं उनके संतुष्टि के लिए, उनके साथ प्रेम के आदान प्रदान करने के लिए भगवान ऐसे भक्तों के परिवार में भगवान से जन्म लेते हैं। क्लोज दिस। तो हम आज के ये संक्षिप्त सत्र में एक ही विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये तो देवकी और वसुदेव, यू पुट द पिक्चर इन द जेल, Devaki and Vasudeva in the jail. Correct? इनसे हमें सीखने के लिए बहुत से अच्छे सबक हैं। जैसे देवकी और वसुदेव, ऐसा बताया जाता है कि देवकी वसुदेव कृष्ण के जन्म के पहले छह बच्चे एक के बाद एक जन्म लिया और उनको दे दिया उन्होंने कंस के पास। तो एक प्रश्न हमें उठ सकता है हमारे मन में, इस दुनिया में क्या ऐसे कोई माँ बाप हैं जो एक एक बच्चे के बाद जन्म देते हैं दूसरे बच्चे को और उसको किसी क्रूर व्यक्ति को दे देते हैं उसको मारने के लिए? कौन ऐसे कर सकते हैं? तो अगर उनको पहले से मालूम ही है कि एक एक बच्चे को मारा जाएगा तो कौन जन्म देगा ऐसे बच्चों को? लेकिन देवकी वसुदेव के जीवन में हम देखते हैं कि भगवान अवतरित होने के पहले उन्होंने एक एक करके छह बच्चे को कंस के पास दे दिया और कंस ने उनको ऐसे ही मार डाला। इतना ही नहीं, उनका जीवन भी बहुत शांति से गुजरा नहीं, क्योंकि वो जेल खाने में रहते थे, जेल के अंदर हमेशा के लिए, बहुत सालों के लिए ऐसे। और जब भगवान अवतरित होते हैं जेल में, बहुत सालों के बाद भगवान अवतरित होते हैं, तो देवकी वसुदेव को जरूर इच्छा होगी उनके मन में कि हमें भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान देना होना चाहिए। लेकिन भगवान ने उनको तुरंत बोला कि आप मुझे लेके जाओ गोकुल में। जन्म होते ही भगवान ने बोल दिया ऐसे। तो इससे हम क्या समझते हैं, देव के वसुदेव के अंदर इतना शरणागति की भावना है, उनके मन में एक ही इच्छा है कि भगवान को कैसे हम संतुष्ट करें, दूसरा कुछ प्रश्न नहीं है। भगवान की संतुष्टि के लिए उन्होंने 6 बच्चों को खो बैठा, भगवान की संतुष्टि के लिए उन्होंने जेल खाने में जीवन जिया, और भगवान अवतरित होते ही भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान को उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया गोकुल में, क्योंकि भगवान का आदेश था ऐसे। इस तरह उनका जीवन ही भगवान के इच्छा को पूर्ति करने के लिए ही था, दूसरा कुछ अलग इच्छा नहीं था। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कृष्ण कि हमारे मन जो होता है बड़ा बदमाश है, क्योंकि मन में संकल्प विकल्प होता है, कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ हमें अच्छा लगता है, कुछ चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता है, खास करके जो हमारे लिए भलाई करने वाले चीज़ हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में सुबह जल्दी उठना हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो भलाई वो लाभकारक है। इस तरह जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बुरा बुरा चीज़ है, वो अच्छा लगता है मन को। तो इस तरह मन जो है, मुझे पसंद है ये नापसंद है, मैं खुश हूँ मैं नाखुश हूँ, इस तरह मन हमेशा कुछ चीज़ों को स्वीकारता है, कुछ चीज़ों को नकारता है इसे। लेकिन वैष्णव का मतलब है हमारे खुद की मनमानी मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को दूर रखकर कृष्ण और गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये हम सीखते हैं किससे, देवकी और वसुदेव से। क्योंकि देवकी वसुदेव के मन में दूसरा कुछ इच्छा नहीं था, भगवान को कैसे हम संतुष्ट करें, बस इतना ही। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, बताते हैं कि भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकारना, भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको नकारना, ये वैष्णव है। तो वैष्णव का जीवन में कभी कभी लगता है कि वैष्णव लोग वो तो देखने में साधारण जीवन जी रहे हैं, जैसे ज्ञानी और योगी लोग, उनके जीवन में बताया गया है कि उनको सन्यासी होना चाहिए, जंगल में जीना चाहिए वगैरह। लेकिन वैष्णव में कोई गृहस्थी भी हो सकते हैं, उनके 4 बच्चे भी हो सकते हैं, फिर भी कैसे इन चीज़ों के बीच में रहते हुए वो भगवान को कैसे वो प्रसन्न कर पाते हैं, वो शास्त्र बताते हैं कि एक ही चीज़ है, वो अपने अहंकार को त्याग कर भगवान और गुरु की इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो सक्षम हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, यही कारण है। उदाहरण के लिए ये भरत मिलाप का लीला आप जब सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। भरत मिलाप में भी भरत ने बोला था रामचंद्र भगवान को, अगर आप अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे मैं इधर ही बैठकर तपस्या करके मैं मर जाऊंगा। तो भगवान रामचंद्र ने बोला उनको, तुम्हारी मरनी क्या बड़ी बात है, कोई भी मर सकता है, आत्महत्या करना तो उतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे आदेश को मानकर तुम अयोध्या वापस लौटकर मेरे इच्छा को पूर्ति करते हुए अयोध्या को राज्य करना, अयोध्या के अगर तुम वो करोगे तो वो बड़ी बात है, ये करना, इससे मैं प्रसन्न होऊंगा तुमसे, तुम्हारे आत्महत्या से मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, ऐसे भगवान ने बोला। इस तरह कभी कभी हमको भी अनुभव होगा जीवन में कि कभी कभी आत्महत्या करना बहुत आसान है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के आदेश को इच्छा को मानकर जीना कठिन है। जिस तरह हम देखते हैं देवकी और वसुदेव के जीवन में, इतने सालों साल वो जंगल में जिए, जेल में, जेलखाने में, और इतने बच्चे को खो बैठे, इतना कठोर परिश्रम किया था, तपस्या की थी पिछले जन्मों में, उसके बाद जब भगवान जन्म लेते हैं तभी भगवान की लीला को देखने को नहीं मिलता है, भगवान चले जाते हैं गोकुल में और अपनी लीलाओं को दिखाते हैं, किसको, यशोदा और नंद बाबा को दिखाते हैं। तो इस तरह की देवकी और वसुदेव की वैराग्य भावना और भगवान की इच्छा को पूर्ति करने की शरणागति हम उनमें देखते हैं। महाभारत में ऐसे एक प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बनकर आते हैं कौरवों को मिलने के लिए, पांडवों की विनती था कि आप जाइए कौरवों को मिलकर आइए, अगर हो सकता है तो हम युद्ध को हम युद्ध नहीं करेंगे, हम कौरव और पांडव हम क्या करेंगे, हम बांट लेंगे। इतना तक कि युधिष्ठिर ने बोला था कि अगर 5 गांव भी मिल जाए तो बस हम संतुष्ट रहेंगे। तो भगवान को मालूम था कि युद्ध होने ही वाला है, फिर भी भगवान गए युधिष्ठिर को संतुष्ट करने के लिए। तो जब धृतराष्ट्र को पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं, वो डर गया। उसका डर क्या था, उसकी इच्छा थी कि ये युद्ध जरूर होना ही चाहिए और इस युद्ध में पांडव लोग मरना ही चाहिए और विजय प्राप्त होना चाहिए किसको, उनके बेटों को। लेकिन जब उनको पता चला कि कृष्ण शांति दूत के रूप में आ रहे हैं, उन्होंने सोचा कि कृष्ण ये इस तरह का समझावट कर लेंगे, समझौता कर लेंगे दोनों के बीच में, युद्ध नहीं होगा और पांडव लोग हमेशा के लिए हमारे जीवन में एक कांटा के रूप में रहेंगे। इस तरह उनको डर पैदा हो गया उनके हृदय में। तो उन्होंने क्या बोला, सभा को बुलाया, उन्होंने बोला कि अभी कृष्ण आने वाले हैं, आप लोग क्या करो, हमारे नगर की सीमा में ऐसे आप आयोजन करो, सुंदर स्त्रियां नाचना चाहिए, सुंदर गायक गीत गाना चाहिए, और ये जो रोज सेंटेड पानी जो होता है उसको फेंकना चाहिए, और जब भगवान कृष्ण आएंगे उधर ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्र उच्चारण करना चाहिए उनको स्वागत करने के लिए। इतना ही नहीं, जब कृष्ण आएंगे उनको 16 हम हाथी देंगे, उनको मोटे मोटे अच्छे हाथी, और हम 8 सोने से बनाया हुआ रथ दे देंगे उनको, और उनको 100 नौकर पुरुष और स्त्रियां 100 हम उनको दे देंगे, दान में दे देंगे सब। इस तरह उनको दान देकर, इतना ही नहीं, उनको सोने चांदी नवरत्न सब दान में दे दो उनको। इस तरह ये वुलन ब्लैंकेट, तरह तरह के ब्लैंकेट ऐसे बताया उन्होंने, ये सब उनको दान में दो। इतना तक कि उनके हाथ भर जाना चाहिए, और कृष्ण इसको स्वीकार करके वो क्या बोलेंगे, मैं आप लोगों से इतना खुश हूँ, आप ऐसे करने से क्या होगा, कृष्ण हम जो उनको उनके हृदय को हम जीत लेंगे, इस तरह हमें करना चाहिए, ऐसा आइडिया बताया धृतराष्ट्र ने। जब विदुर ने सुना, विदुर ने बोला धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र आपके मन में जो सेवा करने की इच्छा है कृष्ण को, ये बहुत अच्छा है, सेवा तो करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि आपके जो व्हाट इज योर मोटिव हेतु, ये जो हेतु जो है वो गलत है, क्योंकि आप कृष्ण को खरीदना चाहते हो। जैसे कभी कभी लोग घूस देकर किसी बड़े आदमी को खरीद लेते हैं, है ना, किसी से अगर कुछ काम करवाना है तो घूस देते हैं लोग, इस तरह तुम घूस देने के लिए प्रयत्न करते हो भगवान को, इस तरह करने से तुम भगवान को जीत नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा हेतु गलत है, ऐसे उन्होंने बोला उनको। इसलिए उन्होंने बोला कि देखो, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो भगवान जो इच्छा करते हैं उसको पूर्ति करो, भगवान की इच्छा को बस। तो दुर्योधन ने यह सब सुना, बोला कि दुर्योधन ने, मुझे भी यही लगता है कि भगवान मानेंगे नहीं ये सब गिफ्ट्स को। तो दुर्योधन ने बोला कि हमें दूसरे तरीके से इनको संभालना पड़ेगा। तो दुर्योधन ने उनको गिरफ्तार करने के लिए कुछ आयोजन की, दोनों बाप और बेटे दोनों मूर्ख थे, क्योंकि दोनों को मालूम नहीं था भगवान कृष्ण को कैसे संतुष्ट करना। तो भीष्म पितामह ने बोला कि देखो, कृष्ण को संतुष्ट करना बहुत आसान है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भगवान इतने महान हैं, एक तुलसी के पत्ते से, थोड़ा जल से, प्रेम से जो दिया जाता है भगवान स्वीकारते हैं, उनको कोई धोखा नहीं दे सकते हैं, भगवान को जो धोखा देगा वो धोखा खाएगा। द्यूतम चलयताम अस्मि, भगवान बताते हैं मैं द्यूत का मतलब, द्यूत क्रीड़ा का मतलब है जो जुआ खेलना, जुआ खेलने में मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट हूँ कोई मुझे धोखा नहीं दे सकते, भगवान बताते हैं मैं धोखा देने वालों को धोखा देने वाला हूँ मैं, ऐसे भगवान बताते हैं। तो ये पहला सबक हम सीखते हैं ये देवकी और वसुदेव से, कि सिर्फ भगवान की इच्छा को जानकर उसको पूर्ति करना। हम अपने वैष्णव जीवन में गुरु और कृष्ण से हमें अनेक संदेश प्राप्त होते हैं, तो हर कार्य में हमें यह पूछना चाहिए कि मेरा हेतु क्या है, किस हेतु से मैं काम करता हूं। देवकी और वसुदेव के मन में कुछ भी हेतु नहीं था भगवान के संतुष्टि को छोड़कर। तो हम जब भक्तिमय जीवन भक्तिमय सेवा करते हैं, हमारे मन में क्या हेतु है? क्या हम मान सम्मान के लिए करते हैं, यश प्राप्त करने के लिए करते हैं, नहीं तो दिखाने के लिए करते हैं? जैसे कभी कभी कोई गुरु आते हैं, जब गुरु आते हैं कभी कभी शिष्य गुरु के सामने अच्छा दिखावा करता है, कूदता है ऊपर नीचे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, सोचता है कि गुरुदेव देखेंगे मेरे कूदने को, देखकर सोचेंगे कि मैं महान भक्त हूँ, उनका दास हूँ। लेकिन गुरु तो देख लेते हैं, बाद में जाकर अधिकृत व्यक्तियों को पूछेंगे कि ये तो इतना उत्साही व्यक्ति है, नाच रहा है अच्छी तरह, तो ये सेवा कैसे करता है? तो लोग बोल देंगे महाराज इसकी सेवा भावना कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके सामने दिखावा करता है बस। तो जान लेंगे कि ये सिर्फ दिखावा है, बाहरी दिखावा। तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी बाहरी दिखावा हो सकता है, नहीं तो हम हमारे हृदय से हृदय पूर्वक हम आदेशों को अपना कर भगवान और गुरु की संतुष्टि के लिए हम काम करते हैं। तो हरेक क्षण हमें हेतु को पूछना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि जीव के हृदय में अनेक तरह के अभद्र हैं। अभद्र का मतलब है अनेक तरह के कलमश हैं, जैसे पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इस तरह दूसरे जीवों के लिए ईर्ष्या भावना, इस तरह की भावनाएं हैं। इसलिए इन महान भक्तों के जीवन से हम सीखते हैं कैसे वो भगवान की सेवा की उन्होंने। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं वासुदेव को कि आप मुझे लेके जाओ गोकुल में। और गोकुल में क्या होता है, उधर यशोदा मैया वो भी गर्भवती है, उधर उसको दो बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस पैदा होते हैं, दो, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन वो तो पूरे नींद में है, उसको मालूम नहीं है। तो जब ये जाते हैं उधर गोकुल में जाते हैं, वसुदेव ने जिनको जन्म दिया वो कौन है, वो कृष्ण को बोलते हैं वासुदेव कृष्ण, क्योंकि वासुदेव कृष्ण चार भुज दिखाते हैं, चतुर्भुज दिखाते हैं रूप। और जब देवकी देखती है चतुर्भुज रूप को, वो बोलती है कि लोग सोचेंगे इतना बड़े बच्चे को कैसे तुमने पैदा किया है, लोग आश्चर्य करेंगे, अरे भगवान आपके शरीर तो चमक रहा है, तुरंत कम से आ जाएगा आपको मारने के लिए, आप तुरंत एक छोटे बच्चे बन जाओ ताकि मैं आपको कहीं छुपा सकूँ, ऐसे उन्होंने बोला। तो तुरंत भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद ये छोटे बच्चे बन गए, उसके बाद वासुदेव ने उनको गोकुल लेके गया। तो ये वासुदेव और देवकी के बच्चे को वासुदेव कृष्ण बोला गया है। ये वासुदेव कृष्ण भगवान कृष्ण के एक एक्सपेंशन है, विस्तृत रूप है। लेकिन कृष्ण किधर जन्म लेते हैं, वो यशोदा मैया के गर्भ में जन्म लेते हैं, कृष्ण और योगमाया दोनों। जब वासुदेव लेके जाते हैं कृष्ण को, या कृष्ण को लेके जब जाते हैं, तभी ये वासुदेव कृष्ण यशोदा कृष्ण से एक हो जाते हैं, क्योंकि यशोदा और नंद के बेटा जो है वही कृष्ण है, असली कृष्ण है। और वो योग माया को लेके आते हैं वापस, उसके बाद आपको मालूम है कैसे कंस ने योग माया को न जानकर एक बच्चे के रूप में ऊपर फेंका, तो योग माया 12 हाथों के साथ देवी ने दर्शन दिया, बोला उसने अरे मूर्ख, तुमको मारने वाला व्यक्ति जो है उसका जन्म ऑलरेडी हो गया और दूसरी जगह है, सही टाइम पर तुमको मारेगा, ऐसे उसने बोला उसको। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये यशोदा और नंद बाबा के रिश्ता जो है कृष्ण के साथ, और देवकी और वसुदेव के रिश्ता जो है, इसमें बहुत फर्क है। प्रभुपाद जी बताते हैं, उद्धव जब आए थे वृंदावन में ब्रजवासियों को मिलने के लिए, तभी उन्होंने बोला कि नंद बाबा को यशोदा मई को बोला, वो दोनों रो रहे थे क्योंकि उस समय अक्रूर ने कृष्ण बलराम को मथुरा में लेके गए थे, तभी नंद बाबा यशोदा मई दोनों रो रहे थे। उद्धव ने बोला उनको कि आपके बेटा जो है आपके बच्चा नहीं है, ये तो हर एक जीव के हृदय में बसा हुआ अंतर्यामी है। आप ऐसे में सोचो कि आपके बच्चा है, ये भगवान हर एक जीव के हृदय में बैठे हुए हैं, इस तरह आपके हृदय में भी बैठे हैं। अगर आप ध्यान करोगे तो आपको भगवान को देखने को मिलेगा, ऐसे वो बता रहे थे। तो नंदा बाबा ने पूछा उनको, तुम क्या बोल रहे हो कृष्ण के बारे में? मुझे मालूम है जब आसमान में बिजली चमकता है तो मेरा लाला क्या करता है, भाग कर यशोदा मई की जो साड़ी है उसके उनके पांव को आलिंगन करके अपने सर को उनके गोद में डालता है, डर जाता है इतना है ये बिजली जब चमकता है आसमान में। और इस तरह जब जब यशोदा मई हाथ में एक लाठी लेकर उसको दिखाती है, वो रोता है। वो कैसे अंतर्यामी हो सकता है सबके हृदय में, वो तो हमारा बच्चा है, ऐसे बोल रहे थे नंदा बाबा। तो हम देख सकते हैं कि यशोदा और नंद जो हैं उनको कृष्ण के साथ जो रिश्ता था वो एकदम निकट रिश्ता था, पूरा प्रेममयी था वो। लेकिन हम देखते हैं देवकी और वसुदेव भगवान कृष्ण को देखते ही तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया जेल में। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रार्थना भी बताया, अनेक प्रार्थनाएं भगवान को। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उद्धव से बढ़कर देवकी और वसुदेव, और उनसे भी बढ़कर यशोदा और नंद, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं उनके प्रेम का प्रकटीकरण जो है वो सबसे ज्यादा है यशोदा और नंद से। ऐसे तो हमारे भक्तिमय जीवन हम किस लिए जी रहे हैं? हमारे हृदय में जो छुपा हुआ कृष्ण प्रेम जो है उसको जागृत करने के लिए। कोटानुकोटि जन्मों में हम इस दुनिया में अलग अलग योनियों में घूमते हैं फिरते हैं, हम इंद्रिय भोग के विषयों के पीछे हम पड़े हैं। लेकिन भागवत बताता है कि हर एक जीव के हृदय में भगवान के ऊपर घनिष्ठ प्रेम है। तो शुरुआत में ये प्रेम कैसे प्रकट होता है? तो भगवान से डर होता है, वो शुरुआत है। क्योंकि जब देवकी और वसुदेव ने भगवान को देखा, तुरंत उन्होंने हाथ जोड़ लिया और दंडवत प्रणाम किया, इस तरह इस तरह का ऐश्वर्य भाव, ये ऐश्वर्यशाली ऐश्वर्य भाव है, ऐश्वर्य भावना है, इस तरह का भक्ति है। ये लक्ष्मी नारायण का भी उपासना ऐसे ही होता है। ऐसा बताया गया है कि वैकुंठ में सिर्फ अढ़ाई रस है, क्या क्या है? शांत रस, दास्य रस और आधा साख्य रस है उधर वैकुंठ में। क्योंकि वैकुंठ में रानियां भी भगवान विष्णु को दास के रूप में ही उपासना करते हैं, उधर साख्य रस और माधुरी रस ऐसा नहीं है। वैकुंठ में शांत रस, दास्य रस और आधा साख्य रस है ऐसे। तो ये प्रेम संकुचित बोला गया है, इसमें प्रेम संकुचित है। लेकिन जब प्रेम विकसित होता है, जैसे हम देखते हैं कृष्ण के जो मित्र होते हैं कभी कभी कृष्ण के कंधे के ऊपर भी चढ़ते हैं, कृष्ण को हरा देते हैं किसी खेल में। कभी कभी कृष्ण हारते हैं, कभी कभी उनके मित्र हार जाते हैं ऐसे। तो इस तरह वृंदावन के संबंध में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, वृंदावन में जो प्रेम की आदान प्रदान होता है वो कहीं भी इस तरह की प्रेम नहीं देखा जा सकता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण क्यों गए गोकुल में? क्योंकि इस तरह के घनिष्ठ प्रेम के आदान प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण गए वृंदावन में इस तरह। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए आए हैं इस तरह के दिव्य प्रेम को सिखाने के लिए, यशोदा मई और नंदा बाबा और ये वात्सल्य रस, इस तरह माधुरी रस, राधा जी और दूसरे गोपियों की भगवान के ऊपर जो घनिष्ठ प्रेम है इसको सिखाने के लिए। तो हम एक बीच में एक गीत गाना चाहेंगे, यह हैव द कृष्ण जिनका नाम है सॉन्ग, तो मैं बता रहा था इसके बारे में, भगवान शांति दूत के रूप में आ रहे थे हैं, एक गीत गाएंगे। यू पुट द सॉन्ग कृष्ण जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका गोकुल, कृष्ण जिनका नाम है,
गोकुल जिन का राम है,
कृष्णा जिन का नाम है, गोकुल जिन का राम है।
ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है,
ऐसे भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम
है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है,
ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है।
यशोदा जिन के मैया है, नंदा जी बापैया है,
यशोदा जिन के मैया है, नंदा जी बापैया है।
ऐसे श्री गोपाल का मेरा बारंबार प्रणाम है,
ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है।
यशोदा जिन के मैया है, नंदा जी बापैया है,
यशोदा जिन के मैया है, नंदा जी बापैया है। गोकुल जिन का धाम है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार
प्रणाम है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे हरे राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम।
वो मैटरनिटी हॉस्पिटल में जो यशोदा मई थी, क्वा 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 ऐसे है, जैसे क्वा क्वा बच्चा रोता है। तो योग माया ने सब जब ये बच्चे के रोने का आवाज सुनते ही सब जीवा से उठ गए और जाकर देखा ये सुंदर कृष्ण को यशोदा के पास। तो ऐसे बताया गया है कि कृष्ण की सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया शास्त्र में, वो एक नीलमणि के समान थे, एक नीलमणि के समान चमक रहा था उनका शरीर, जैसे एक बादल होता है, नया नया बादल। ये सबको और उनके शरीर से एक तरह का अनोखा एक सुगंध निकल रहा था। तो ये सब देखकर सब ब्रजवासियाँ बहुत खुश हो गए और नंद बाबा को संदेश प्राप्त हो गई और सब अनेक गीत गाने लगे। तो इतने में ऐसे बताया गया है कि भगवान शिव जी बहुत सैकड़ों सालों से उन्होंने तपस्या की थी भगवान कृष्ण के लिए, तो ऐसे तपस्या करते करते एक समय जब भगवान ने दर्शन दी उनको, उस समय शिव जी ने याचना की भगवान से, हे भगवान, मुझे मालूम है कि आप द्वापर युग के समय आप अवतरित होने वाले हैं, तो मुझे भी इच्छा है कि आपकी दिव्य लीलाओं को दर्शन करने के लिए मुझे एक मौका प्राप्त हो। ऐसे शिव जी ने विनती की थी भगवान को, क्या मैं एक पहाड़ बनकर मैं वृंदावन में रह सकता हूँ? ऐसे पूछा उन्होंने पहले, और बाद में उन्होंने पूछा, पहाड़ नहीं, एक छोटा चट्टान बनता हूँ, नहीं तो कम से कम मैं व्रज रज बनकर मैं आपकी लीलाओं का आस्वादन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने उनको बोला, तुमको इस तरह मिट्टी बनने की ज़रूरत नहीं, तुम एक पहाड़ बन जाओ और उसके ऊपर मेरे पिताजी नंद बाबा एक सुंदर महल बनाएंगे और उस महल में जो भी लीलाएं होते हैं तुमको वो सब देखने को मौका प्राप्त होगा। तो शिव जी बहुत खुश हो गए। अभी इसलिए वो नंदेश्वर बोलते हैं, नंद भवन जो बनता है, नंद भवन किधन बनाया है, नंद भवन, वो उसको नंदेश्वर बोलते हैं, वो पहाड़ है, आजकल भी आप देखेंगे नंदग्राम है उधर, उस पहाड़ के ऊपर भी ऊपर ही नंद भवन बना है। तो अभी शिव जी को इच्छा हुई कि भगवान की जन्म होगी तो मुझे देखना चाहिए भगवान को जाकर, तो आए। आपको मालूम है शिव जी हाथ में एक त्रिशूल पकड़े हैं और उस त्रिशूल में एक डमरू है और डमरू में दो बॉल्स होते हैं उसमें, उसका बजाते में डम 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 ऐसे बजता हो, तो बजाते हुए वो आए। तो आवाज सुनकर यशोदा मई डर गई, ये किसका आवाज है? तो उन्होंने दरवाजा खोल कर देखा, शिव जी थे बाहर, उनके गले में सर्प थे और देखने में कोई भी डर जाता था। तुरंत वो दरवाजे को बंद कर दिया उन्होंने। तो शिव जी वापस बुला रहे थे यशोदा मई को, तो यशोदा ने सोचा कि कृष्ण डर जाएंगे, ये छोटा बच्चा है देखकर डर जाएगा वो। लेकिन जब वापस जब दरवाजा खोला, शिव जी ने बोला कि मुझे आपके लाला के दर्शन करने की इच्छा है, आप कृपया मुझे छोड़िए। यशोदा ने बोला, कभी नहीं, ये बच्चा डर जाएगा, चले जाओ। तो शिव जी ने बोला कि अगर आपने मुझे नहीं छोड़ेंगे तो मैं बाहर बैठ जाऊंगा, मैं इंतजार करूंगा, जितना भी साल हो मैं इंतजार करूंगा, जब आपका बच्चा बाहर आएगा हम दर्शन करेंगे। तो यशोदा मई ने बोला, वो दरवाजा बंद करके बाहर आ गई, बोला कि तुम जैसे लोग किस लिए आते हो? सिर्फ वृंदावन में ब्रजवासियों को मालूम है कि लोग रोटी मांगने के लिए आते हैं, साधु बाबा लोग, तुमको रोटी चाहिए बस। उन्होंने कुछ एक दर्जन रोटी दे दिया उनको, ले लो ये रोटी, जाकर खाओ, लेकिन घर के बाहर बैठो मत। इस तरह उनको बेच दिया। तो शिव जी चले गए दूर दूर में, चले गए एक जंगल में पास में। आजकल भी आप देखेंगे वृंदावन में उनको बोला जाता है कि आशेश्वर महादेव, आशा ईश्वर महादेव, ये मतलब आशेश्वर महादेव। तो क्या करते हैं, शिव जी जाकर एक जगह बैठकर तपस्या करते हैं भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए। उनके हृदय में आशा होता है कि कभी समय आएगा कृष्ण को देखने के लिए, सही समय में कृष्ण मुझे दर्शन देंगे। इस आशा के साथ वो आशेश्वर वन में जाकर आशेश्वर महादेव बनते हैं वो, ऐसे बैठकर। इतने में क्या होता है, यशोदा के लाला कृष्ण जो है वो रोना चिल्लाना शुरू हो जाता है, इतने रोते हैं। यशोदा मैया उनको खिलौने देती है, बहुत तरह तरह की चीज देती हैं, लेकिन भगवान का रोना जो है बंद नहीं करते हैं। तो यशोदा मैया अपनी सब सहेलियों को बुलाती है, सखियों को बुलाती है। तो एक बूढ़ी सखी आती है, वो बोलती है यशोदा को, किसी का दृष्टि लग गया तुम्हारे बच्चे के ऊपर। आपको मालूम है भारत में अनेक लोगों को मालूम है दृष्टि के बारे में। उन्होंने बोला कि किसी का दृष्टि नजर पड़ गया तुम्हारे बच्चे में, इसलिए ये रो रहा है इस तरह। सोचो अच्छी तरह, आज सुबह से कौन आया इधर? तो उन्होंने बोला, वृषभानु महाराज आकर गए, उपानंद आए, सुनंद आए, ऐसे अलग अलग नाम बताया उन्होंने। और उन्होंने बोला, एक योगी भी आया। तो सबने बोला, शायद वो योगी ने नजर डाला उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर, इसलिए बच्चा रो रहा है। तो बूढ़ी स्त्री ने बोला कि उसके पास ही तुमको जाना पड़ेगा, जाकर पूछना पड़ेगा इसका उपाय क्या है बच्चे को ठीक करने के लिए। तो सब उसके यशोदा के सखियां सब चारों दिशाओं में गए वो योगी को ढूंढने के लिए। और ये एक जंगल में देखा हो शिव जी बैठकर ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो गोपियों ने उनको देखकर बुलाया, आ जाओ आकर ये नंद के लाला जो है उसके रोने को बंद कर दो। इस तरह उनको विनती करके लेके आया उन्होंने। तो जब शिव जी आए नंद भवन के बाहर खड़े रहे तो उन्होंने बोला, मैं पहले से आपको बोला मुझे दर्शन करना है कृष्ण की, आपने छोड़ा नहीं मुझे। तो यशोदा ने ऐसे दरवाजे को खोला, कृष्ण को दिखाकर तुरंत बंद कर दिया। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, जब वो दरवाजा खोलती थी कृष्ण हंसते थे, जब दरवाजा बंद करती थी वो वापस रोते थे ऐसे। तो यशोदा बाहर आ गई और बोला उनको, तुमने ही मेरे बच्चे को रुलाया, उसको तुम ही शांत करो। तो शिवजी ने बोला उसके लिए एक ही उपाय है, ये बच्चा जो है उसके पदक कमल मेरे सर के ऊपर आप रखो, तभी वो रोना उसका बंद हो जाएगा। तो यशोदा, मैंने देखा उनके गले में इतने सर्प थे, बिच्छू थे, तरह तरह के प्राणियां थे, वो डर गई बहुत देखकर, कैसे मेरे बच्चे के पांव को इसके सर के ऊपर रख सकती हूँ। वो नहीं नहीं बोल रही थी, लेकिन सब उसके सहेलियों ने बोला कि नहीं हाँ आपको रखना ही पड़ेगा, सब लोगों ने उसको फोर्स किया। उसके बाद यशोदा मई बाहर लेके आई अपने लाला को, उनके सर के ऊपर पांव रखा, वो तुरंत उसका रोना बंद हो गया। और शिव जी बहुत सुंदर नाचने लगे, एक नटराज वेश धारण करके, आपने देखा होगा नटराज कैसे नाचते हैं ऐसे। तो जब नाचना शुरू हो गया, शिव जी के लाला उसको देख हंस पड़ा, बार बार हंस पड़ा वो। यशोदा को इतना खुशी आ गई। यशोदा ने बोला, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वसन कीजिए। उन्होंने बोला, योगी आप नंद भवन के आंगन में ही रह जाओ, कहीं मत जाओ, इधर रह जाओ और वृंदावन का वास करो। जब जब मेरे लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए, ऐसे बोला उन्होंने। जब जब मेरा लाला रोएगा तभी दर्शन दो, उसका रोना बंद हो जाएगा, ऐसे विनती किया उन्होंने। तो शिव जी ने बोला, सही बात है मैं करूंगा, लेकिन दो शर्त है। क्या है? रोज जब आप लाला को नहाते हो उस चरणामृत को मेरे सर के ऊपर डालना चाहिए आपको रोज। हाँ, और लाला को जो खिलाओगे भोग उसके प्रसाद को भी मुझे खिलाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही रह जाऊंगा, ऐसे बोला उन्होंने। तो आजकल भी आप देखेंगे वृंदावन में जाइए, आप नंदग्राम में देखेंगे आपको शिव जी का, ये महादेव जी का नंदग्राम में एक मंदिर है, आजकल भी वो चरणामृत से उनको अभिषेक करते हैं शिवलिंग के ऊपर, और वो भोग अर्पण होने के बाद प्रसाद को उनको देते हैं आजकल भी। तो इस तरह हम शिव जी की आतुरता देखते हैं भगवान कृष्ण को, कृष्ण के दर्शन के लिए। तो ये वसुदेव अवदेव की जब जेल में थे, बताया गया कि जेल बहुत अंधकार से छाया हुआ था, लेकिन कृष्ण उधर प्रवेश होते ही तुरंत वो जेल में जो भी अंधकार था वो सब खत्म हो गया, एकदम ऐसे रोशनी बढ़ गया जेल के अंदर। इस तरह शास्त्र में तुलना किया गया है कि हमारे हृदय जो है वो एक अंधकार गुफा के समान है, गुफा के अंदर अंधकार के समान है, लेकिन जब कृष्ण प्रवेश होते हैं, कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है, तभी हमारे हृदय चमकता है जिस तरह उनके जेल चमक रहा था। तो लेकिन कृष्ण को दर्शन करने के लिए शिव जी के अंदर जो आतुरता था, इस तरह की आतुरता की जरूरत है, क्योंकि वो बाहर इंतजार करने के लिए तैयार थे, नहीं तो जंगल में जाकर तपस्या करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब तक कृष्ण के दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक वो तपस्या करने के लिए तैयार थे वो। इस तरह देवकी वसुदेव भी 10,000 साल सिर्फ सूखे पत्तों को खाकर भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए वो इंतजार कर रहे थे ऐसे। इसलिए अगले जन्म में जब देवकी वसुदेव बने, भगवान उनके पुत्र बनकर आए ऐसे, और वो अंधकार से छाया हुआ जो जेल काना है उसको रोशनी से फैला दिया। यू शो द नेक्स्ट स्लाइड, इज इट द शिवजी स्लाइड, करेक्ट? शिवजी एक डमरू लेकर बजाते हैं, अब देखते हैं आशीश्वर महादेव बताया गया। तो मैं दोनों बता रहा था, वसुदेव देवकी की भी इच्छा है भगवान की दर्शन के लिए, इस तरह शिव जी की भी इच्छा है। इसे इसे हम और एक सबक हम सीखते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है कि वो सब देवी देवता के भी वही स्रोत्र हैं, वही मालिक हैं। तम दैवतानां परमं च दैवतम, तम ईश्वराणां परमं महेश्वरम, तम दैवतानां परमं च दैवतम, पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेश्वमीद्यम। यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित्, यस्मान् नाणियो नो ज्योयोस्ति किंचित्, वृक्ष इवस्तब्दो दिवितिष्ठत्येकस्ते नेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। ये उपनिषदों में बताया गया है कि भगवान जो है वो ईश्वरों का ईश्वर है, पतियों का पति है, मालिकों का मालिक है, वो ऐसे बताया गया है। इसलिए यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तव, ऐसे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत सब देवताएं आकर भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। इस तरह जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में थे उस समय भी देवता आते हैं भगवान को, इसको गर्भस्तुति बोलते हैं भागवत में। भगवान आते हैं, भगवान की देवताएं आते हैं भगवान के गुणगान करने के लिए। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भीर निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः, मनोवचोभ्याम अनुमेय वर्त्मनो देव क्रियायाम प्रतियन्त्यतापि। वो बताते हैं भगवान को हमारे आंखों से नहीं तो मन से वचनों से हम पकड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ देवक्रिया के द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। क्या है देवक्रिया? देवक्रिया मीन्स डिवोशनल सर्विस, दैट इज देवक्रिया। देवक्रियायाम प्रतियन्त्यतापि। तो हमारे इंद्रिय जो हैं, हमारे इंद्रिय सक्षम नहीं है भगवान को देखने के लिए, लेकिन जितना हम भगवान के लीला स्मरण में और भगवान के कथा में हम डूबे रखते हैं हमारे इंद्रियों को, उतना हमारे इंद्रिय दिव्य बन जाते हैं और दिव्यता के द्वारा भगवान को देख सकते हैं। जैसे वसुदेव देवकी सदा कृष्ण का स्मरण करते हुए जेलखाने में रहे तो अचानक भगवान ने उनको आकर दर्शन दिया, ऐसे शिव जी सदा भगवान की ध्यान करते रहे तो अचानक लाला शिव जी की दर्शन देते। इतना ही नहीं, उनको चरणामृत भी प्राप्त हो गया, प्रसाद भी प्राप्त हो गया उनको, दोनों ऐसे। तो ये भी हम सीखते हैं। और बहुत आश्चर्य की बात है कैसे वसुदेव के हाथ पैर सब जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तुरंत ये सब जंजीरें चुर चुर हो गए, चुर चुर हो गए, सब कट गए बहुत आसानी से। कृष्ण का जन्म हुआ तुरंत उनके सब बंधन छूट गया। तो भागवत में बताया गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टये वात्मनिश्वरे। भगवान का साक्षात्कार जब हमारे हृदय में उत्पन्न होगा, ये होगा उदय होगा, उस समय सब तरह के बंधनों से हम छूट जाते हैं, ऐसे बताया गया है। तो ये बंधन क्या है? शास्त्र बताते हैं इस दुनिया में हमें मालूम है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी शांति से जी नहीं सकता है। इस दुनिया में हमेशा चिंता रहता है, किसी न किसी चिंता रहता है। हमें तो मालूम है कि बुढ़ापा मृत्यु वगैरह आने वाला है, व्याधि सब आने वाला है, लेकिन हर अवस्था में व्यक्ति को चिंता है। बचपन में चिंता है माता की गोद को छोड़कर स्कूल में जाना, है ना? कौन बच्चा अपने माँ के गोद को छोड़कर स्कूल जाना चाहता है? आप सबको मालूम है बचपन में जब आपको स्कूल जाना होता है, स्कूल बस आता है, सब बच्चे रोते हैं। क्यों? क्योंकि माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद स्कूल में पढ़ाई करते 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 बहुत परीक्षाओं को पास करना होता है और माँ बाप भी बच्चे के पीछे पड़ते हैं, तुमको बहुत मार्क मिलना चाहिए, फर्स्ट रैंक मिलना चाहिए। हर एक माँ को इच्छा है मेरे बच्चा फर्स्ट रैंक मिलना चाहिए, उनके पीछे पड़ते हैं, बच्चे अनेक तकलीफ उठाते हैं। उसके बाद नौकरी लगना चाहिए, नौकरी नहीं लगा तो टेंशन होता है। नौकरी लगने के बाद शादी नहीं हुआ, अगर 28 साल 30 साल हो गया तो लोग बहुत चिंता करते हैं, इतना साल से हम देख रहे हैं शादी नहीं हुआ। ऐसे अगर शादी भी हो गया, अगर 5-6 साल हो गया बच्चे नहीं हुआ तो सब लोग डरते हैं, सब लोग पूछते हैं आपको बच्चा नहीं हुआ, इतना साल हो गया, क्या हो गया। तो उसके बाद अगर बच्चा हो गया तो खुश होता है, लेकिन बच्चा होने के बाद चिंता, अगर स्त्री हो गया तो चिंता होता है इसका शादी कैसे करावे हैं, इसके लिए हमें पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा इसे है। नहीं तो डर होता है कि आजकल की माँ बाप की क्या डर है, अगर स्त्री हो तो शादी के समय तक माँ बाप अपने जान पकड़ कर बैठे रहते हैं, इसको कुछ हो नहीं जाना चाहिए है, भाग नहीं जाना चाहिए, ऐसे डर होता है। अगर लड़का हो वो भी गलत मार्ग में नहीं चलना चाहिए, माँ बाप को बहुत टेंशन होता है, हर दिन का टेंशन, हर महीने का टेंशन ऐसा है। उसके बाद भी बूढ़ा होने के बाद भी हमारा टेंशन नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है ठीक तरह से काम नहीं करता है, घुटनी में दर्द होता है, पीछे दर्द होता है, क्या क्या तरह के, आप इस शरीर के किसी भी अंग को पकड़ो हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ व्याधि है। मैंने ऐसे एक परीक्षा दिया था विद्यार्थियों को, सर से लेकर पांव तक हर एक अंग को लो और क्या व्याधि हो सकता है लिखो। अब सब विद्यार्थी इतने एक्सपर्ट थे, सैकड़ों व्याधियों के नाम के साथ लिख ले वो, उन्होंने इतना नाम निकाला उन्होंने, इस शरीर में सैकड़ों व्याधि हो सकता है, ये शरीर को व्याधि मंदिर हम बोलते हैं, व्याधि का मंदिर है शरीर। तो हम इस तरह के शरीर में हम फंसे हुए हैं, और इतना ही नहीं शरीर तो तकलीफ देता हुआ देता है, हमें मानसिक तनाव भी है, साथ साथ ये दुनिया एक स्पर्धात्मक दुनिया है, कोई भी शांति से जी नहीं सकता है इस दुनिया में। देखिए अभी दिवाली के समय दक्षिण भारत में मुझे मैंने देखा है अनेक लोग स्वीट खाते हैं, बहुत दिवाली के समय मिठाइयाँ खाते हैं, खाने के बाद उनको दांत में दर्द होता है तो अस्पताल में जाते हैं और डॉक्टर बहुत खुश हो जाता है, वो देखता है कि वो खिड़की को खोल कर देखता है कितना लंबा लाइन लग गया उधर, वो देखता है। तो जब तक मर्जी नहीं होते हैं डॉक्टर को खुशी नहीं मिलेगा, है ना, ये भौतिक दुनिया का नियम है कि एक व्यक्ति की खुश के लिए दूसरे व्यक्ति को दुख प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसे दुनिया है। अगर आपको फर्स्ट रैंक मिलना है तो किसी को सेकंड रैंक मिलना पड़ेगा, दो लोगों को फर्स्ट रैंक नहीं मिल सकता है ना। लेकिन भगवत धाम में जो वैकेंसी है, आपका वैकेंसी आपके लिए है, मेरा वैकेंसी मेरे लिए है, उधर स्पर्धा नहीं है, हम सबका वैकेंसी तैयार है उधर। अगर हम अप्लाई करेंगे भगवत धाम को, भगवान का नाम जपेंगे, हम सीधा पहुंच जाएंगे उधर, कुछ कॉम्पिटिशन नहीं है उधर, इस तरह है। लेकिन ये दुनिया आप देखेंगे, एक मेंढक जो है वो एक इसको मक्खी को कहता है वो, और मेंढक को एक सर्प कहता है, इस तरह हिरण को एक बाघ कहता है, शेर कहता है इस दुनिया में, ये इस तरह का दुनिया है, एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति निगलता है इस दुनिया में। लेकिन क्यों इस तरह भगवान ने दुनिया को बनाया है, इस तरह के तकलीफों से ऊपर उठने के लिए एक जीव को इच्छा होना चाहिए, मैं इस भौतिक दुनिया का नहीं हूँ, ये शरीर सिर्फ एक कपड़ा के समान है, मृत्यु के समय में एक कपड़ा बदलकर दूसरा कपड़ा पहनता हूँ, मृत्यु के समय वासांश जीर्णानि यथा विहाय, भगवान बताते हैं। इस तरह मैं शरीर रूपी एक पिंजरे में मैं बैठा हुआ हूँ, हे भगवान मुझे इस भौतिक शरीर से ऊपर उठाओ और अपने आध्यात्मिक दुनिया में ले लो, ताकि मैं हमेशा के लिए आपकी नित्य निरंतर सेवा कर सकूँ। इस तरह हर एक जीव को प्रार्थना करना चाहिए भगवान को, जिस तरह वसुदेव और देवकी की जो जंजीरें सब टूट गए हैं जब भगवान का दर्शन हुआ, इस तरह हम भी हरे कृष्ण जप करते हैं, चार नियम पालन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, इस तरह जब हमारा शुद्धिकरण बढ़ता जाएगा, जितना हृदय शुद्ध होगा भगवान प्रवेश होंगे हमारे हृदय में, तभी ये सब बंधन छूट जाएंगे, हमें पुनः इस भौतिक दुनिया में दूसरा शरीर धारण करने की जरूरत नहीं है, यही जन्म हमारा लास्ट जन्म रहेगा, हम भगवत धाम चले जाएंगे। अगर हम भगवत धाम नहीं भी गए, अगले जन्म में हम एक भगवान के भक्त के घर में हमें एक जन्म प्राप्त होगा, उधर हम भक्ति को जारी रखेंगे, हम ऐसे प्रभुपाद जी सिखाते हैं। तो जिस तरह ये जेल का दरवाजा भी खुल गया, जंजीरें भी टूट गए भगवान का दर्शन प्राप्त करते ही, इस तरह हम सबको भी अनुभव है, आप में से अनेक लोग इधर सोलह माला करते हैं, चार नियम पालन करते हैं, हम सब एक तरह का आत्मतृप्ति और हृदय में हृदय स्पर्शी सुख और शांति का अनुभव हम कर सकते हैं अपने अपने जीवन में। जब जिस समय हमने कृष्ण भावनामृत को अपनाया, हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है, इतना कम शरणागति से हमें इतना बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है, अगर हम देवकी वसुदेव जैसे पूर्ण शरण जाएंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा, हम अनुभव कर सकते हैं उसका। ये भी हम एक सबक सीखते हैं। और लास्ट एक पॉइंट है, वसुदेव और देवकी ने जब भगवान के दर्शन किए, भगवान ने तुरंत बोला वसुदेव को, हे वसुदेव मुझे लेके जाओ किधर, गोकुल में। तो वसुदेव को बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान ने मुझे बोला गोकुल लेके जाने के लिए, मैं किस तरह का क्षत्रिय हूँ, मैं तो पतित क्षत्रिय हूँ, मुझे तो कंस ने हरा दिया है, अब जेल में डालकर रखा है, इतना ही नहीं मेरा हाथ भी जंजीरों से बंधे गए हैं, ऐसे एक क्षत्रिय को कैसे कृष्ण बोल सकते हैं कि मेरा रक्षा करो और मुझे लेके जाओ गोकुल में। लेकिन वसुदेव को हालांकि ये प्रश्न आया उनके मन में, फिर भी उन्होंने एक क्षण भी सोचा नहीं क्या मेरे से हो सकता है कि नहीं, क्या मैं सक्षम हूं कि नहीं। उन्होंने क्या किया, भगवान के आदेश को तुरंत पालन किया उन्होंने। उन्होंने बोला ठीक है भगवान, गोकुल लेके जाना है, मेरे जंजीरों को कैसे निकालूंगा, दरवाजा कैसे खोलूंगा, पूछा भी नहीं उन्होंने, हाँ बोल दिया उन्होंने, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, करिष्ये वचनम तव बोलते हैं उन्होंने। तो भगवान को हाथ में लिया, ऑटोमेटिकली उनका जंजीरें निकल गए, दरवाजा खुल गया। इससे हम क्या सबक सीखते हैं, हमें समझना चाहिए कि अगर भगवान हमें शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, अगर भगवान चाहते हैं कि हमारे द्वारा हमको निमित्त बनाकर कुछ कार्य करावे, इस तरह भगवान इच्छा करते हैं, तो भगवान हमें हमारे द्वारा कुछ भी करवा ले सकते हैं। अर्जुन देखिए, ये परीक्षित महाराज ने बोला सुखदेव गोस्वामी को, मैं मेरे जो दादाजी हैं अर्जुन, वो कौरव सैन्य सागरम, ऐसे बोला उन्होंने शब्द, कौरव सैन्य सागरम, कौरवों के सैन्यों का सागर को पार करके कैसे उन्होंने विजय प्राप्त किया, ऐसे उन्होंने पूछा। क्योंकि एक भीष्म पितामह जो है वो हजारों अर्जुनों के समान है, क्योंकि इतने शक्तिशाली हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, इस तरह के लोग हैं, कृपाचार्य, इस तरह के लोग बहुत शक्तिशाली हैं। इन लोगों को कैसे हराया युद्धभूमि में, ऐसे परीक्षित ने पूछा था। तो सुखदेव को समय समझाते हैं उनको कि ये साधारण बात नहीं है, भगवान कृष्ण ने उनको शक्ति प्रदान किया। उनके गांडीव जो है कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान ने अर्जुन को एक गांडीव को चलाने के लिए इस तरह की शक्ति प्रदान की कि वो युद्ध भूमि में वो विजय प्राप्त कर सके। लेकिन युद्ध होते ही भगवान ने उस शक्ति को वापस छीन लिया, उसके बाद अर्जुन को अनुभव हुआ उसका, सिर्फ युद्ध के लिए, क्योंकि वो धर्म युद्ध था इसलिए भगवान ने उनको ऐसी शक्ति दिया था उन्होंने। इस तरह हम देख सकते हैं कि अगर भगवान हमको निमित्त बनाना चाहते हैं तो कोई भी रोक नहीं सकता है। प्रभुपाद जी, स्वामी प्रभुपाद देखिए, वो उनका उम्र था 70 उम्र, अमेरिका जाते समय उनको 2 हार्ट अटैक हो गए बीच में। कैप्टन ने बोला उनको, अरे आप तो इतने बूढ़े हो, हार्ट अटैक भी हो गया, अगर आप बचना चाहते हो तो वापस जहाज चले जाओ भारत में, इसी जहाज से हम आपको वापस लेके जाएंगे। लेकिन पापा ने बोला नहीं, मुझे मेरे गुरु के आदेश को पालन करना है। मेरे गुरु ने बोला कि अभी अमेरिका में जाना है, प्रचार करना है, मैं प्रचार करते करते मर जाऊंगा उधर ही, ऐसे बोला प्रभुपाद ने। ये मेरा विजय है क्योंकि मेरे गुरु की इच्छा है, इस तरह उनका दृढ़ता था उनका हृदय का। और वो जब अमेरिका गए, देखा उन्होंने बड़े बड़े मकाने हैं, और लोग इतना तेजी से भाग दौड़ कर रहे थे, कार इतने तेजी से चल रहे थे। तो प्रभुपाद ने देखकर एक सुंदर गीत लिखा उन्होंने, हे भगवान, इस तरह रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति में फंसे हुए लोगों को कैसे मैं ये भगवद गीता और भागवत का संदेश कैसे मैं पहुंचा सकता हूँ, क्या ये लोग सुनेंगे मेरे से, मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है, और मैं बूढ़ा भी हूँ, और इन लोगों को समझाना कठिन है, और मेरा मातृभाषा भी बंगाली है, इधर इस तरह के देश में आकर मैं कैसे इन लोगों को समझाऊंगा, और आध्यात्मिक चीज इतने ऊंचे हैं, और ये लोग इतने भवबंधन में फंसे हुए हैं, इंद्रियों के पीछे पड़े हैं, पैसा और इंद्रिय भोग को छोड़कर दूसरा कुछ मालूम नहीं है इनको, कैसे मैं सिखाऊंगा। लेकिन उन्होंने बोला कि लेकिन मुझे एक बात के ऊपर विश्वास है, हे भगवान, आपके जो दिव्य नाम है, ये नाम अगर किसी के कान के अंदर प्रवेश करेगा, उसके हृदय को पहुँच कर उसको सफाई कर सकता है, हृदय को सफाई करके ऐसे पतित से पतित व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, आपके दिव्य नाम ऊपर उठा सकता है, इसके ऊपर मुझे विश्वास है। क्योंकि पुराने जमाने में हमने सुना है मरा 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 नाम जप करके वाल्मीकि बहुत महान संत बन गए, और मृगारी भी हरे कृष्ण मंत्र जप करके बहुत क्रूर शिकारी था, वो बहुत महान वैष्णव बन गया हो, इस तरह ये हिप्पी लोगों को भी मैं भक्त बनाऊंगा, इस तरह के विश्वास के साथ प्रभुपाद जी प्रवेश किया उन्होंने अमेरिका में। देखिए एक पेड़ के, मैं भी गया था जब अमेरिका गया था, वो पेड़ के पास हम गए थे, उधर हम जप किया, देखा वो पेड़ पार्क के बीच में है, उधर जा उधर उसके पीछे उसके नीचे खड़े होकर प्रभुपाद जी करतार हाथ में लेकर हरे कृष्ण गा रहे थे उधर, और लोग आ गए, पुरुष स्त्रियाँ आए सुनने के लिए, कुछ लोग गिटार लेके आए, कुछ लोग ड्रम्स लेके आए, अलग अलग वाद्य लेके आए, उनको ये भगवान के दिव्य नाम बहुत अच्छा लगा उनको, और सुनने लगे और प्रश्न पूछने लगे। एक साल के लिए तो कुछ भी मिला नहीं प्रभुपाद जी को, उसके बाद धीरे 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 विजय प्राप्त हुआ प्रभुपाद जी को। तो भगवान ने प्रभुपाद जी को एक निमित्त बनाकर पृथ्वी ते आचे दिनगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैमोर नाम, ये जो भगवान ने भविष्यवाणी की थी उस भविष्यवाणी को पूर्ति किया भगवान ने। लेकिन हमें जानना चाहिए कि प्रभुपाद जी कैसे निमित्त बने, भगवान ने क्यों उनको इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रभुपाद जी की शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह वसुदेव और देवकी की शरणागति इतना था, उनको मालूम था कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है ये जेल को तोड़ना, जंजीरों को तोड़ना और भगवान को गोकुल लेके जाना, लेकिन अगर भगवान की इच्छा है तो हम परवाह नहीं करेंगे, क्या योग्यता है कि नहीं हमारे पास, हम करके ही बैठेंगे, इस तरह का विश्वास था उनके हृदय में। इसलिए हम देखते हैं इस तरह वसुदेव और देवकी की शुद्ध भक्ति और शरणागति। और आज ही के दिन 12 बजे भगवान जेल खाने में मथुरा में देवकी और वसुदेव के समक्ष अपने दिव्य दर्शन देते हैं, ये बहुत शुभ दिन है। तो हमें इस तरह के महान शुद्ध वैष्णवों के स्मरण करना और उनकी लीलाओं को सुनकर अपने जीवन में इन अच्छे चीज़ों को लागू करने के लिए प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है। और आज जैसे दिन जब हम इन चीज़ों के बारे में स्मरण करते हैं, उसका और भी लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है। तो मैं एक गीत गाऊंगा, उसके बाद हम I'll sing the Bajahure Man song, and then we will sing Hare Krishna.
Bajahure Man Shri Nanda Anandana Abhaya Taranam Vindare Bajahure Bajahure mana sinandanandana abhaya saranaravindare Bajahure mana sinandanandana sulabha manava janama satsange पात परेशन यदि न जामिने जागिर विपले से विनो कृपण दुर्जना विपले से विनो कृपण दुर्जना कपल सुकलव लागिरे कपल सुकलव लागिरे Bye-bye.
ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जब भगवान ने सृष्टि किया, सब जीवराशियों को सृष्टि की भगवान, लेकिन संतुष्ट नहीं थे भगवान। उन्होंने सोचा कि ऐसे एक जीवराशि मुझे सृष्टि करना चाहिए जिसमें व्यक्ति भगवान क्या है, भक्ति क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे मैं ऊपर उठ सकता हूँ, कैसे भगवत धाम वापस जा सकता हूँ, ये सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए उसके अंदर योग्यता होना चाहिए। इस तरह सोचकर भगवान ने सोचा कि और एक मैं योनि को तैयार करूँगा। उस समय भगवान ने मनुष्य योनि को तैयार किया, मनुष्य को अपने रूप के समान ही एक रूप तैयार किया भगवान ने। वो कौन है? वो मनुष्य है, श्रीमती राधा रानी जैसे रूप है माताओं का। तो भगवान ने पुरुष और स्त्री का रूप कैसे किया? उन्होंने अपने रूप जैसे ही भगवान ने तैयार किया इसे, और जीवों को प्रदान किया वो शरीर। क्योंकि उस शरीर में हम दिव्य चीज़ों के बारे में हम समझ सकते हैं और हम अभ्यास कर सकते हैं अपने जीवन में। इसलिए बोलते हैं दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, दुर्लभ मानव जीवन में सत्संग करके हमें विजय प्राप्त करना चाहिए, जन्म मृत्यु से के चक्कर से ऊपर उठना चाहिए। और बताते हैं इसको छोड़कर दुनिया में, बताते हैं शीत आतप बात बरिशन, सर्दी में, गर्मी में, सब तरह के मौसम में, बारिश में भी मैं कठोर परिश्रम करता हूँ। किस लिए? कोई कृपण लोग हैं इस दुनिया में, उनकी उनके उनके पास काम करते 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 मेरा पूरा शक्ति चला गया है उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए। मैंने मेरे जीवन में कभी भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रयत्न नहीं किया। इस तरह वो विलाप करते हैं, इस तरह वो रोते हैं। तो इस दुनिया के लोगों को संतुष्ट करना बहुत कठिन है। आप अपने 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 घर में देखिए, पत्नियों को, पतियों को, माता को, पिता को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को संतुष्ट करना बहुत कठिन है इस दुनिया में। हैं, आप ट्राई करिए, जितना भी संतुष्ट करो वो बोलेंगे ठीक है और आगे और आप करो और करो। कभी भी नहीं बोलेंगे कि मैं अभी आपसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, कभी नहीं बोलेंगे वो। लेकिन भगवान बोलते हैं मुझे तुलसी अर्पण करो, मैं संतुष्ट हूँ। देखिए हैं, इसलिए भगवान को शरण जाना श्रेष्ठ है। इसका मतलब नहीं कि आप घर से भाग जाइए, लेकिन बोलने का मतलब क्या है, भगवान को संतुष्ट करना आसान है, लेकिन इस दुनिया में कभी भी किसी को हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है हमें इस दुनिया की जिम्मेदारी के साथ साथ भगवान की शरणागति को बढ़ाना चाहिए। ये धन यवन पुत्र परिजन जिते के आते परती रे, धन यवन पुत्र परिजन जिते के आते परती कमल दल जला जीवन तलमल कमल तल जला जीवन तलमल कमल दल जला जीवन तलमल दल जला जीवन तलमल भज हो हरि पद नीति रे कि हमारे जीवन जो है एक कमल के दल में अगर एक पानी का बूंद गिर जाए तो कितना जल्दी वो निकल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्स जैसा कुछ चीज है, कमल के दल के ऊपर टिकता नहीं है पानी। इस तरह हमारा जीवन भी बहुत क्षणभंगुर है। ऐसा लगता है कि हमारा बचपन कल जैसे लगता है। इस तरह हमारा बुढ़ापा आने के बाद हमारे युवक अवस्था भी कल जैसे रहेगा, बहुत जल्दी चला जाता है। कितना जल्दी चला जाता है जीवन, इतना तेजी से भागता है जीवन। इसलिए कौन कब मरेगा, कितना समय जिएगा, किसी को पता नहीं है। कम से कम परीक्षित महाराज को पता था 7 दिन हम जीने वाले हैं, हम लोगों को वो भी पता नहीं। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि शुभस्य शीघ्रम बोला गया है, खास करके आध्यात्मिक जीवन के लिए। लोग और अनेक चीज़ों को अप्लाई करते हैं शुभस्य शीघ्रम, लेकिन भगवान की शरणागति के लिए नहीं लगाते हैं। इसलिए बताते हैं कमल दल जल जीवन तलमल बजकु हरि पद नीति रे।
श्रवण केतन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, श्रवण केतन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, श्रवण केतन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे।
इधर में इधर बताते नवविधा भक्ति के बारे में, श्रवण करना भगवत कथा को, कीर्तन करना, जैसे भगवत कथा को बताना दूसरों को, और कीर्तन का मतलब है नाम जप भी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह कीर्तन करना और उसका श्रवण करना और धीरे धीरे भगवान का लीला इत्यादि का स्मरण भी हम कर पाएंगे हैं, जब हम इस तरह का नाम जप करते रहते हैं, स्मरण वंदन पाद सेवन, तो नवविधा भक्ति है भगवान के पूजन करना, अर्चना करना, भगवान को सखा के समान मानना और आत्मनिवेदन करना है ये सब। तो गोविंद दास ने गीत गाया है और वो बता रहे हैं कि ये सब चीजों में मुझे लगना चाहिए। प्रहलाद महाराज के पिताजी ने उसको पूछा, कौन है उनके पिताजी, हिरण्यकशिपु, उन्होंने पूछा कि अरे बेटे बोलो, तुम्हारे गुरुकुल में क्या सिखाया तुम्हारे गुरुओं ने, सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है, क्या बोला मालूम है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पित विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यदा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। उन्होंने बोला मेरे पिताश्री, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम ये सब बताया नाविदा भक्ति बोलकर बोला कि सब तरह के विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या यही है, और जो मनुष्य इस नाविदा भक्ति को अपनाता है अपने जीवन में वो सबसे श्रेष्ठ मैं मानता हूँ, ऐसे उन्होंने बोला। तो हम सब लोगों को ये प्राप्त हुआ है प्रभुपाद जी के द्वारा, उनकी किताबों के द्वारा। बजहु रे मन तिरंग नंदन अवय करन Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
नंदन भगवान कृष्ण की, नंद के लाला की, श्री श्री राधा कृष्ण बिहारी की, श्री श्री गौरिका की, कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की।
So now we are going to have dancing kirtan for about 15 minutes. Please, you all can rise.
Hare Krishna, Hare Krishna,
के लिए कैसे कीर्तन करना चाहिए, कैसे नाचना चाहिए, कैसे हमारे भाव को प्रकट करना चाहिए, ये उन्होंने सिखाया। हम जो नाच रहे हैं ये भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री राधा कुंज बिहारी, उनकी संतुष्टि के लिए है। इस दुनिया में कितने लोग हैं दूसरे लोगों के लिए नाच रहे हैं, लेकिन जब हम भगवान के हाथ में कठपुतली बनेंगे और भगवान के लिए नाचेंगे, तभी हमारा जीवन का अंतिम सफलता को हम प्राप्त करेंगे।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Hare, Hare Krishna,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Bol,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare.
हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
जय जय कन्हैया जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल के
जय लाल के जय कन्हैया लाल के
आनंद भाया जय कन्हैया लाल के
आनंद भयो जय कन्हैया
आज तेरी घोड़ी देने और देने पाल के
घोड़ा देने और देने पाल
आनंद भाया जय कन्हैया लाल
जवानों
को हाथी घोड़ी गुड़ों को पालती
जवानों को हाथी घोड़े गुड़ों को पालती
जवानों को हाथी घोड़े गुड़ों को पालती
जवानों को हाथी घोड़े गुड़ों को पालती
आनंद
जय कन्हैया लाल
जय कन्हैया लाल के
जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल के
जय कन्हैया लाल की
जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की
नंदवाया
जय कन्हैया लाल
जय नंदा जोदा दुलारी वरदारी गोपा
जय जय नंदा यशोदा दुलार वरदारी गोपा
जय जय नंदा यशोदा दुलार तेरी वरदारी गोपा
बोलिए जय जय नंदा यशोदा दुलार गिरिवरदारी गोपाल
गोपाल गोपाल
गोपाल
गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल
गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल
गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे
हरे
राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण
जोर से गाइए
कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
हरे हरे हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे
राम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम
जय राधा कुंज बिहारी राधा
कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे
राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र
जन्माष्टमी महामहोत्सव की श्री श्री राधा पंजा शिष्य गौनाचार की शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की कलयुग पावन हरि नाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी टू असेंबल्ड डिवोटी
कृष्ण
ऑल ग्लोरी टू असेंबल्ड डिवोटी All glories to assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga.
Thank you very much.
Hare Krishna. आज जन्माष्टमी के महोत्सव पर